श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 22। पुरुषः सपरः पार्था भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यहां यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। एक इंटरेस्टिंग है कि भगवद गीता में वेदों का सारा जो सार है यानी कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन ये बताया जा रहा है स्पष्ट रूप से। तो अब यहां देख रहे हैं संबंध तो होता है जीवात्मा का संबंध भगवान से और अभिधेय है कि वो संबंध को दोबारा जागृत कैसे किया जाए। और यहां पे स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि अभिधेय तत्व का निरूपण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और वह है अनन्य भक्ति। अनन्य का मतलब अन्य देवताओं का आश्रय छोड़ करके केवल कृष्ण का ही आश्रय ले तो उसको भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यानी भगवान परम पुरुष भगवान कृष्ण की प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही की जा सकती है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस जगत में कोई भी वस्तु आनंद से पूर्ण नहीं है। उस वस्तु का भोग करके हम लोग अपने मन से निर्णय कर लेते हैं कि ये वस्तु मुझे अच्छी लग रही है तो मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति को ही सुख मान के बैठे हैं। उन वस्तु में स्वरूपगत रूप से कोई आनंद नहीं है लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब वस्तुएं जो हैं उनका एक ही स्वरूप है और वो है सच्चिदानंद। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यहां जो विविधताएं हैं वो सब प्रकृति के तीन गुणों से उद्भूत हैं रजोगुण तमोगुण और सतोगुण लेकिन वहां सब कुछ आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित है। इसकी कल्पना तो नहीं कर सकते का अंदाजा लगा सकते हैं। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है जैसा कि सातवें अध्याय में बताया गया है। इसको थोड़ा समझ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भगवान की शक्तियां भगवान का वैभव अनंत है और वो विस्तारित होता रहता है और भगवान उसको जानते हैं एक क्षण और फिर अगले क्षण वो और विस्तारित हो जाता है। तो ये है अनंत। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपने भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। अर्थात भगवान अपने धाम में रहते हैं प्राय यहां पे नहीं आते हैं लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सूर्य अपने सूर्य की किरणों के द्वारा पूरे जगत में व्याप्त रहता है उसको उद्भासित करता है ऐसे ही भगवान परमात्मा के द्वारा अपने आप को विस्तार करते हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा भी इस पूरे जगत में व्याप्त रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रहेंगे लेकिन उनका चित्र पर जो चित्र है वो विभिन्न प्रकार के टीवियों में एक साथ दिखाई पड़ता है पूरे भारत में तो अपने अंश रूप में वो हर घर पे विस्तारित हो जाते हैं। इसी प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में उपस्थित रहते हैं। तो सूर्य और सूर्य की किरणों वाला कारण आपको पता होगा। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। अर्थात कोई वस्तु या तो उनकी पराशक्ति में स्थित होती है या फिर अपरा शक्ति में स्थित है लेकिन दोनों ही शक्तियां भगवान पर ही आधारित हैं। जैसे हम लोग अंधकार में स्थित हो सकते हैं और रोशनी में स्थित हो सकते हैं लेकिन दोनों ही सूर्य पर निर्भर करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अंधकार भी सूर्य पर ही निर्भर करता है। अंधकार की कोई अपनी अलग से सत्ता नहीं होती। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं, अर्थात भौतिक जगत में भगवान अपराशक्ति भौतिक शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी हैं और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस ब्रह्मांड के बाहर जाने की तो कल्पना छोड़िए, ब्रह्मांड के छोर के बारे में भी हम नहीं जानते हैं। अभी तो ये भी नहीं जानते हैं कि अनेक अनेक ब्रह्मांड होते हैं। तो हम लोग बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का क्या तरीका है, और वो एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। हम कुछ भी मानते बैठे हैं कि इस देवता को पूज लें, उस देवता को पूज लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अंत तो गत्वा भगवत गीता की बात अक्षरशः सत्य है और भगवान की भक्ति करके ही इस जगत से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अगर कृष्ण के शरण नहीं लेता है तो फिर मुक्ति नहीं होती है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे नींद से उठने के बाद ही स्वप्न नष्ट होता है, और किसी भी साधन से स्वप्न नष्ट नहीं होता है और स्वप्न की परेशानियां नष्ट नहीं होती हैं, स्वप्न का मोह समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि की भजन किए बिना ये जीवात्मा का जो देह के प्रति अभ्यास है, अपने को शरीर मानने का अभ्यास है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होगा। एको वशी सर्वगह कृष्ण, ये गोपाल तापनी उपनिषद का उद्धरण है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल भगवद गीता में ही है, उपनिषद में भी भगवान का धाम का वर्णन है। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। एक भगवान रहता का अर्थ ये नहीं कि केवल कृष्ण ही रहते हैं, अर्थात कृष्ण ही भगवान है और बाकी सब उनके दास के रूप में रहते हैं। वे अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वे अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं और अपने आप को अलग अलग रूप में विस्तृत करते हैं, ताकि अपने अलग अलग भक्तों से अलग अलग रस का आस्वादन कर सकें। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान का ये जो अर्चा विग्रह है, उसमें भगवान के सारे अवतार होते हैं सम्मिलित। ये भी हमने कुछ समय पहले कृष्ण क्षेत्र महाराज के मुख से सुना था, बड़ा अद्भुत है। अब आप पूछो कि कैसे होता है, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। तो शास्त्रों का वर्णन इस प्रकार से है। तो क्यों भगवान ने ऐसा किया है, थोड़ा विचार कीजिए कि जो भौतिक जगत में रहने वाली बद्धात्माएं हैं, उनके पास शक्ति नहीं है भगवान को देखने की। सही में हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने विग्रह के रूप में आ जाते हैं, ताकि उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करके हम लोग पवित्र हो सकें। कितनी अद्भुत करुणा है भगवान की। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। अर्थात भगवान कृष्ण के अनेक अनेक विष्णु अवतार होते हैं आध्यात्मिक जगत में, और वो अलग अलग लोगों को के देवता नहीं कहना चाहिए, मतलब मुख्य मतलब भगवान के रूप, भगवान का जो विग्रह है अलग अलग वैकुंठों में है, वो अलग अलग नाम से है। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद कहा गया है, परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। इन दोनों चीजों को समझाता हूं। गोलोक निवसति अखिलात्म भूत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो लीला है, नित्य लीला है, वो गोलोक में चलती रहती है। भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है इस भौतिक जगत को मेंटेन करने के लिए, इसका सृजन करने के लिए, इसको पालने के लिए, इसका प्रलय करने के लिए, ये काम उन्होंने भगवान महाविष्णु को दे दिया। और भगवान महाविष्णु को भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो तो लेटे लेटे सोए सोए पूरी जगत की सृष्टि कर देते हैं, सोए सोए सब कुछ प्रलय कर देते हैं। तो ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि इस जगत में हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता है जैसे कुछ अपना कार्य करने के लिए शक्ति ना लगानी पड़े। लेकिन हाँ, एक अनुभव हम देखते हैं कि एक बड़ा अधिकारी होता है तो खाली आज्ञा मात्र करता है, इच्छा मात्र करता है, और उसकी इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं जो उस आज्ञा को क्रियान्वित करते रहते हैं। ऐसे ही ये खाली उदाहरण के रूप में है, लेकिन भगवान की इच्छा मात्र से पूरे जगत की सृष्टि हो जाती है। भगवान को लगना नहीं पड़ता कि भगवान किसी को टेंडर दें, ठेका दें, ईंट पत्थर लेके आए। नहीं, ईंट पत्थर लाएंगे कैसे, क्योंकि सृष्टि से पहले तो कुछ था ही नहीं। तो भगवान अपनी ही शक्ति से सब कुछ सृजन करते हैं और अपनी इच्छा मात्र से करते हैं, उन्हें कोई परिश्रम की जरूरत नहीं होती। तो इसी कारण से बहुत बार लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है। जब हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो बिल्कुल निर्णय कर लेते हैं कि उसके पीछे पेंटर है, लेकिन जब कोई फूल देखते हैं तो नहीं सोचते कि इसके पीछे भी एक पेंटर है। और अद्भुत बात है कि पेंटिंग वाले फूल में खुशबू नहीं होती है, वो जीवंत नहीं होता है, लेकिन जीवित फूल जब हम देखते हैं तो सोचते हैं वो अपने आप हो रहा है। वो अपने आप नहीं हो रहा है, भगवान के निर्देशन में हो रहा है। जैसे सूर्य बहुत दूर होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों पे वनस्पतियां उग रही हैं, उनका पोषण हो रहा है। एटलीस्ट पृथ्वी तो हमें दिखती है, चलिए दूसरे ग्रह नहीं दिखाई पड़ते आपको। तो हम ये देख सकते हैं कि सूर्य भले अपनी जगह स्थित है, सूर्य पृथ्वी पे नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा यहाँ पे जितने सारे वनस्पति हैं सबका पोषण कर रहा है। ऐसे भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा इस पूरे जगत को क्रियान्वित करते रहते हैं। हरे कृष्णा।